परमात्मने नमः। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के चार पाद अर्थात चार अध्याय हैं। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। समाधि पाद का पहले वर्णन कर उन्होंने योग की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जिससे रुचि जागृत हो, वहां तक पहुंचने की साधना बता दी। साधना से ईश्वरीय विभूतियों का प्राकट्य होगा और अंत में अविनाशी परम पद कैवल्य पद की प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अध्याय समाधि पाद। शास्त्र के आरंभ में ही प्रश्न स्वाभाविक है कि योग मूलतः है क्या।
अथ योगानुशासनम्।
अब आरंभ करते हैं योग शास्त्र। योग है क्या? योग एक अनुशासन है। अनुशासित किसे करें? पास पड़ोस को, एक दूसरे को, एक देश दूसरे देश को? एकांत में चिंतन करने वाला किसे अनुशासित करें? नियंत्रित किसे करना है? इस पर कहते हैं
योगश्चित्त वृत्ति निरोधः।
चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात सर्वथा रुक जाना योग है। वृत्ति तो एक तरंग है, मन में उठने वाली संकल्पों की लहर। उसका सर्वथा रुक जाना, अचल स्थिर ठहर जाना योग है। मान ले अथक परिश्रम कर किसी ने चित्त वृत्तियों का निरोध कर ही लिया तो उससे लाभ?
तदा दृष्टो स्वरूपे वस्थानम्।
उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। दृष्टा आत्मा जो चैतन्य है, सर्वथा निर्मल है, अपने ही परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। वृत्तियों के निरोध से यही लाभ है, यही प्राप्ति है, नैष्ठिकीम सिद्धि या परम तत्व का विदित होना। प्रश्न उठता है, चित्त वृत्तियों का निरोध होने से पहले क्या दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता? उस समय दृष्टा का क्या स्वरूप रहता है? इस पर कहते हैं
वृत्ति सारोप्य मितरत्र।
दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष, वही है आप। लोग कहते हैं मैं तो शुद्ध हूं, आत्मा हूं, किंतु यह महापुरुष कहते हैं कि जैसा वृत्ति का प्रवाह है वैसा ही पुरुष का स्वरूप है। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि भगवान इस शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर जो भजते हैं उनकी क्या गति होती है, भगवान ने कहा अर्जुन पुरुष श्रद्धामय है। एक भी पुरुष सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसमें श्रद्धा न हो। जो जैसी श्रद्धा वाला है स्वयं भी वही है। यही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। चित्त वृत्ति निरोध और स्वरूप में स्थिति से पूर्व वृत्ति का जैसा प्रवाह है वैसा ही आपके लिए दृष्टा है। वृत्ति से होकर परमात्मा का उतना ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रश्न उठता है यह वृत्ति क्या है, वृत्तियों का स्वरूप क्या है?
वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टा।
पांच तरह से विभक्त ये वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। एक क्लेशों को धारण करने वाली, दूसरी क्लेशों से मुक्ति दिलाने वाली। पांच प्रकार की वृत्तियों के नाम इस प्रकार हैं:
प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः।
प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति, इनमें से प्रमाण वृत्ति को संचालित करता है, स्मृति संस्कारों को धारण करती है। मूलतः वृत्तियां दो हैं, विपर्यय और विकल्प। विपर्यय वृत्ति मिथ्या ज्ञान की संवाहिका है, तो विकल्प वृत्ति अपौरुषेय शब्द, दृष्टा दृश्य के संयोग से मिलने वाले शब्द को समझकर चलती है। एक वृत्ति निद्रा है, यह संपूर्ण वृत्तियों की सुप्तावस्था है। इसमें न तो अज्ञान की जड़ता या व्यर्थ ज्ञान की जकड़न है और न शब्द ज्ञान से उत्पन्न वस्तु अर्थात दृष्टा का विकल्प ही है। यह जड़ शरीर तक ही सीमित है, जो है ही नहीं। भूतादिकों के शरीर जिनका अस्तित्व नहीं है, अभाव है, वहीं तक सीमित है। यह वृत्ति की निद्रा अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं,
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।
अर्जुन, आसुरी वृत्ति वाले लोग कार्यम कर्म में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होना नहीं जानते, अर्थात करने योग्य क्या है उसे न जानते हैं, न प्रवृत्त होते हैं तथा न अकर्तव्य कर्म समझते हैं, न उससे निवृत्त होना जानते हैं। वृत्ति की यह सुप्त अवस्था निद्रा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी संपत्ति के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया है। अब देखें प्रमाण वृत्ति का स्वरूप।
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि।
प्रमाण तीन है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष अर्थात प्रति अक्ष का अर्थ है आंखों के समक्ष होना, किंतु इतना ही प्रत्यक्ष नहीं है। पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अनुभूति प्रत्यक्ष है। अनुसुईया आश्रम में एक बार मध्य रात्रि में हम चट्टान पर सोए थे, ठंडी ठंडी एक लकीर पेट के ऊपर चलती प्रतीत हुई, नींद खुल गई। हमने सोचा इतना ठंडा बर्फ जैसा वो भी चलती हुई लकीर, ये सर्प हो सकता है। धीरे धीरे ठंडा लगना बंद हुआ, हमने टॉर्च जलाया तो सचमुच सर्प था। आंखों ने तो देखा नहीं था, किंतु स्पर्श से वह देखने में आ गया। वन्य पशु 1 किलोमीटर दूर से ही शेर की गंध पहचान जाते हैं, चिक पिक कर अपनी टोली को सतर्क करने लग जाते हैं। कोल भील भी 0.5 किलोमीटर दूर से ही सिंह की गंध पा जाते हैं, अपनी सुरक्षा का प्रबंध करने लग जाते हैं। नासिका में गंध प्रत्यक्ष होते ही अनुमान क्रियाशील हो उठता है। तीसरा प्रमाण आगम है। परमात्म स्वरूप कैवल्य पद की ओर अग्रसर होने के लिए आप्त पुरुषों का दर्शन, उनकी वाणी, उनका सानिध्य आगम कहलाता है। प्रमाण पाते ही वृत्तियां संचालित हो जाती हैं। यदि वे ईश्वरोन्मुखी हैं, वैराग्य विवेक कल्याण के भाव श्रद्धा जगाती हैं, तो अक्लिष्ट तथा प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है तो क्लिष्ट कहलाती है। प्रमाण से वृत्ति संचालित होती है। प्रथम वृत्ति है विपर्यय।
विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपो प्रतिष्ठम्।
जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्यय है। अस्तित्वहीन वस्तुओं में आसक्ति विपर्यय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष सोचता है कि मेरे पास इतना धन है, उतना होगा, मैं बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, उसे मारूंगा, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, यश को प्राप्त करूंगा और इस प्रकार कभी न पूर्ण होने वाली अनंत इच्छाओं वासनाओं का सदैव आश्रय लिए रहता है। ऐसे पुरुष शनै शनै घोर नरक में गिरते हैं, वे अंधकार की ओर उन्मुख हैं। यह वृत्ति संपूर्ण की संपूर्ण क्लिष्ट है, किंतु इसे कहीं प्रमाण मिल गया जैसे आप्त पुरुषों का दर्शन, तत्काल यह क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट की ओर उन्मुख हो जाएगी। वाल्मीकि, अंगुलीमाल इत्यादि की वृत्ति में सत्पुरुषों के दर्शन से परिवर्तन का सूत्रपात हो गया। पूज्य परमहंस जी महाराज के साहचर्य से सती अनुसुईया क्षेत्र में दस्युओं के एक गिरोह का हृदय परिवर्तन हो गया, उसका सरदार संत हो गया। दूसरी वृत्ति है विकल्प।
शब्दो ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यो विकल्पः।
जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है, जिसका विषय वस्तु वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। इसी पाद के 42वें सूत्र में है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से मिली हुई समाधि सवितर्क है। किंतु किसी शब्द के सुनने या उसका आशय समझ लेने से समाधि तो नहीं लग जाती। विभीषण श्री राम की शरण में आया, निवेदन किया, किंतु मंत्रियों ने संदेह ही व्यक्त किया। काम रूप कही कारण आया, शब्द भी मिला, आशय भी मिला, उसके अनुसार विभीषण को बांधने की तैयारी भी हो गई, समाधि तो किसी की नहीं लगी। वास्तव में यह शब्द अनुभव है। जो सक्षम सद्गुरु द्वारा अधिकारी साधक में भजन की जागृति के रूप में प्रस्फुटित होता है, दृष्टा और दृश्य के संयोग से जो प्रेरणा मिलती है, वह शब्द है। जो दृश्य का प्रयोजन है पुरुष के लिए भोग और मुक्ति प्रदान करना, यह प्रयोजन सिद्ध करके दृष्टा और दृश्य का संयोग भी शांत हो जाता है। वह चेतन दृष्टा जिस प्रकार मुक्ति प्रयोजक दृश्य संचालित करते हैं, समझाते हैं, उसका नाम शब्द है। इस शब्द के आश्रित होकर चलने वाली चित्त की प्रवृत्ति विकल्प कहलाती है। यहां वस्तु परमात्मा तो नहीं है, लेकिन उसका विकल्प सुदृढ़ हो जाता है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, आत्मा ही सत्य है, सनातन है। इस प्रकार वस्तु परमात्मा तो नहीं है, किंतु उसका विकल्प भली प्रकार पुष्ट हो जाता है। इसका नाम विकल्प वृत्ति है। यह संपूर्ण वृत्ति अक्लिष्ट है, किंतु संग दोष से प्रमाण मिलते ही यह क्लेशों की ओर उन्मुख हो जाती है। श्रृंगी की भृंगी करिडारी, पाराशर के उदर विदार। पूज्य परमहंस महाराज जी को अनुभव में दिखाई पड़ा था कि वह पिछले कई जन्मों से साधु थे। पिछले जन्म में आवागमन से निवृत्ति होने ही वाली थी कि एक दो कौतूहल मन में होने लगे कि ये शादी विवाह होता क्या है, कुछ एक महात्मा गांजा पीकर झूम क्यों रहे हैं। मन की इतनी सी फिसलन के कारण एक जन्म और लेना पड़ा। महाराज जी सर्वथा अक्लिष्ट वृत्ति में चल रहे थे, मन में स्फुरण से क्लिष्ट वृत्ति में आ गए। शब्द पर महापुरुषों ने बहुत बल दिया है। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहां लौं जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर फिर भटका खाए। शब्द के बिना चिंतन में जो सुरति लगाई जाती है अंधी है। शब्द के बिना श्रुति का अध्ययन बुद्धि स्तर के अनुसार अटकल लगाना मात्र है। यदि शब्द का द्वार नहीं मिला, भजन जागृत नहीं हुआ, शब्द अर्थ और उसका ज्ञान समझते हुए आचरण में ढालते नहीं बना, तो बार बार भटकना पड़ता है, अनुभव को भी पढ़ना पड़ता है। भगवान लिंग अलिंग, प्रतीक या बिना प्रतीक के ही जानकारी देते रहते हैं। यह विद्या पढ़नी पड़ती है। यही है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द को समझें कि इष्ट द्वारा कहा क्या गया, उसका आशय क्या है। उस शब्द से उत्पन्न ज्ञान के साथ मन में उठने वाली वृत्ति, जिसका विषय वस्तु इष्ट नहीं है किंतु उसका विकल्प अवश्य है, यही विकल्प वृत्ति है। भगवान श्री राम ने अनुज लक्ष्मण से कहा, माया के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। अविद्या दुष्ट है, अत्यंत दुख रूप है, उससे विवश होकर यह जीव भवकूप में पड़ा है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। माया का दूसरा रूप विद्या है, जो जगत के तीनों गुणों को नियंत्रित करने में समर्थ है। गुण बस जाके, सत रज और तम तीनों गुणों को बस में करने वाली है, किंतु वह विद्या माया प्रभु प्रेरित है। यदि भगवान प्रेरणा न करें तो उसके पास कोई बल नहीं है, वह विद्या है ही नहीं। इस प्रकार दृष्टा के सहारे चलने वाली वृत्ति विकल्प वृत्ति कहलाती है। यह विकल्प वृत्ति जो सर्वथा अक्लिष्ट है, विजातीय दृश्य प्रत्यक्ष होते ही यह क्लिष्ट की ओर परावर्त हो सकती है। जैसे यह साधन पथ दुर्गम है, कुछ काल के लिए भोग त्याज्य नहीं है, एक कुटिया बना लेना बहुत परिग्रह तो नहीं है। अब निद्रा वृत्ति के लक्षण बताते हैं।
अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा।
अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। न तो यह संसार के मिथ्या ज्ञान से बंधी है और न शब्द से उत्पन्न ज्ञान ही है, यह वृत्ति की सुप्तावस्था है। जब व्यक्ति न प्रकृति की ओर गतिशील है और न स्वरूप की ही ओर गतिशील है, इन महापुरुष ने इसे भी वृत्ति की सुप्तावस्था माना है, यह वृत्ति निद्रा है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हुए हैं, यह निद्रा वृत्ति है। जगत रूपी रात्रि में प्रायः लोग प्रकृति में आसक्त रहते हैं, किंतु निद्रा वृत्ति वाला प्रकृति की जड़ता से भी नहीं बंधा है। मान ले दो मार्ग हैं, एक पर प्रकाश ही प्रकाश और दूसरा अंधकार से परिपूर्ण। दोनों के मध्य एक पगडंडी पर कोई व्यक्ति चला जा रहा है, एक पांव इस मार्ग पर दूसरा उस मार्ग पर, कभी इधर देखता है कभी उधर। यह निद्रा की वृत्ति है, न संसार की ओर न स्वरूप की ओर। हम भी जब पूज्य महाराज जी की शरण में आए, महाराज श्री ने कहा, कुछ छव नहीं जानत है। वास्तव में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी, एकदम निद्रा वृत्ति। न तो संसार की जड़ता थी, न भगवान की राह का ज्ञान था। यह निद्रा वृत्ति भी सदैव नहीं रहेगी। ज्यों ही कुछ प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान लगा, वृत्ति गतिशील हो उठेगी। शुभ प्रत्यक्ष हुआ तो अक्लिष्ट वृत्ति, अशुभ पड़ा तो वृत्ति क्लिष्ट हो जाएगी। किसी वैभव संपन्न व्यक्ति को देखा, सांसारिक जीवन में सफलता की कामना करने लगा, जो है ही नहीं। मिथ्या ज्ञानम की ओर आकृष्ट हो क्लिष्ट वृत्ति का सृजन कर बैठा। कहीं आगम प्रमाण मिल गया, महापुरुष का दर्शन, तो वह परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाएगा, अक्लिष्ट वृत्ति प्रवाहित हो जाएगी। यह संपूर्ण वृत्तियां जिस पर अंकुरित होती हैं, वह धरातल है स्मृति।
अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति है।
भूतकाल में जिन कार्यों का अनुसरण होता चला है, उनका पुनः प्रकट हो जाना, न छिपना, स्मृति वृत्ति है। कैवल्यपाद के सप्तम सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। उनके कर्मों का न शुभ संस्कार पड़ता है न अशुभ, क्योंकि वे स्वरूपस्थ हैं। किंतु अन्य लोगों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं, भले, बुरे और मिश्रित। प्राणी और उसके संस्कारों के बीच जाति अर्थात जन्म, देश और काल का व्यवधान बना रहता है। चित्त वृत्ति का एक प्रकार से दूसरे में परिवर्तित हो जाना जाति अर्थात एक जन्म है। शरीर परिवर्तित हो गया, यह भी जन्म है। इन जन्म परिवर्तनों, देश और काल का व्यवधान होने पर भी संस्कारों के प्रकट होने में कोई व्यवधान नहीं होता, ठीक समय पर वैसा ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है। स्मृति वह धरातल है जहां संस्कार प्रकट होते हैं, संस्कार स्मृति पटल पर उभरते हैं। किंतु एक स्तर ऐसा आता है जब चित्त का निरोध हो जाता है, ऐसी दशा में स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितरका। स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो गई, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो गया, लक्ष्य मात्र का आभास रह गया, यह निर्वितर्क समाधि है। उस समय स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है, उसमें न कुछ भला अंकुरित होता है न बुरा, क्योंकि चित्त का स्वरूप ही शून्य हो गया। अंतिम संस्कार भी उभर कर सामने आ चुका, फल दे चुका और शांत हो चुका। उस समय स्मृति पूर्णतः शुद्ध है किंतु जीवित है। स्मृति कोई वृत्ति नहीं है। महर्षि ने वृत्तियों को समझाने के लिए पांच तरीके से बांटा है। उनमें से यह ऐसा धरातल है जिस पर शेष वृत्तियां उद्भूत होती हैं। अंतिम संस्कार के निकलते ही चित्त का स्वरूप शून्य सा हो जाता है, स्मृति परिशुद्ध हो जाती है, केवल लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है। उस समय निर्वितर्क समाधि की अवस्था आ जाती है। अतः स्मृति वह धरातल है जिस पर पूर्व में अनुसरण किए हुए अनंत काल के संस्कार अंकुरित होते हैं। ये क्लिष्ट भी हो सकते हैं, अक्लिष्ट भी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र आदि मनु से इसी को कहा। उन्होंने कुछ दिया नहीं, केवल कहा। मनु ने उसे अपनी स्मृति में धारण कर लिया। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ से ही चली आ रही है। मानव के प्रादुर्भाव के साथ ही यह प्रसारित हुई और तब से लेकर अब तक वृत्ति के दो ही रूप हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। एक परम श्रेय प्रदान करती है, अक्लिष्ट है, तो दूसरी अधोगति की ओर ले चलती है, क्लिष्ट है। यही है शुभ अशुभ, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, सजातीय विजातीय, विद्या अविद्या, अर्थात विद्या जो परम गति प्रदान करती है, अविद्या जो भवकूप में भरमाती है। यही है पुण्यमयी प्रवृत्ति, पापमयी प्रवृत्ति, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। काल क्रम से भाषाएं बदलती गईं, इनके संबोधन बदलते गए, किंतु वृत्तियां दो ही रहीं। एक ईश्वरोन्मुखी वृत्ति और दूसरी अनंत योनियों में बार बार भटकाने वाली वृत्ति। किंतु महर्षि पतंजलि ने इन वृत्तियों की गति को समझने समझाने के लिए इन्हें पांच दृष्टियों से लिया। वृत्ति संचालित कैसे होती है? प्रमाण से। वृत्ति किस धरातल पर अंकुरित होती है? स्मृति पटल पर। यदा कदा यह सुषुप्त रहती है तो निद्रा। यह चलती है किसकी प्रेरणा से, किस दिशा में? विपरीत ज्ञान की जड़ता का बंधन है तो विपर्यय तथा दृष्टा दृश्य के संयोग से जो शब्द मिलता है उसको समझना और लगना यह विकल्प है। इस प्रकार वृत्तियों को कई दृष्टियों से रेखांकित किया गया है जिससे साधक सरलता से वृत्तियों की चाल को समझ सके और चल सके। वृत्तियां शांत कैसे हो, वृत्तियों का निरोध कैसे हो, इसके लिए आरंभिक उपाय बताते हैं।
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध।
उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। इन्हीं से साधन का आरंभ है, पूर्ति पर्यंत ये साथ चलते हैं। इन दोनों में से प्रथम अभ्यास का स्वरूप देखें।
तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः।
चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वह अभ्यास कहलाता है। यह अभ्यास वृत्तियों के अंतिम निरोध तक चलता है, इसलिए इसका भली प्रकार पालन करना चाहिए। इस पर कहते हैं,
सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि है।
किंतु वह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर तथा श्रद्धा के साथ करते रहने से दृढ़ होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। वह योग न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। अब वैराग्य का स्वरूप बतलाते हैं।
दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्।
लोक और परलोक के देखे सुने विषयों में तृष्णा रहित चित्त की वशीकार नामक अवस्था वैराग्य है। अर्थात संसार में जो कुछ देखा सुना गया है, यहां से लेकर स्वर्ग तक के भोगों में राग का त्याग वैराग्य कहा गया है। यही वैराग्य अभ्यास संपन्न होने पर पुरुष विदित हो जाता है, जिससे पर वैराग्य की अवस्था आती है।
तत्परम पुरुष ख्यातैर गुण वैतृष्ण्यम्।
पुरुष अर्थात परम तत्व परमात्मा के ज्ञान से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। उस समय प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव पर वैराग्य है, वैराग्य की पराकाष्ठा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इंद्रियों को विषयों से समेटने वालों का राग भी परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। जब श्रेष्ठतर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है तो साधक तृष्णा भी करे तो किसमें? जिस पुरुष के ज्ञान से पर वैराग्य की उपलब्धि हुई है उसका स्वरूप क्या है? पूर्ण ज्ञान की पूर्व अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं,
विद्या वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः।
वितर्क विचार आनंद तथा अस्मिता के साथ जो समाधि होती है वह संप्रज्ञात कहलाती है। योग में सुरत सम है, योग भली प्रकार ज्ञात है किंतु इस योग में वितर्क चलता रहता है। साधन पाद सूत्र 33 में कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। योग साधन में विरोधी भाव आने पर उनमें कमजोरी देखना, उनके द्वारा होने वाली अनिष्ट की भावना करके उनसे बचना प्रतिपक्ष भावना है। ऐसे वितर्क भी उठते हैं, उनके निवारण के लिए विचार भी चलता रहता है। ज्यों ही निवारण हुआ आनंद भी है और अस्मिता प्रकृति पुरुष का मिश्रण, इनसे मिलीजुली चित्त का जो समाधान है वह संप्रज्ञात योग की अवस्था है। अब देखें प्राप्ति।
विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोन्यः।
जब वितर्क विचार आनंद और अस्मिता पर भी विराम लग जाए, अभ्यास करते करते इस पूर्व अवस्था पर जहां विराम लग गया जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य ही है अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है, अर्थात वह कैवल्य की अवस्था वाला है, सूक्ष्म है, अनिवर्चनीय है, जिसमें अनेक जन्म से चले हुए पथिक ही इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं। जैसे अनेक जन्मों के पश्चात जब बुद्ध राज प्रासाद में जन्मे वह उनका प्राप्ति वाला अंतिम जन्म था, काग भुशुंडी का अंतिम जन्म 1000 जन्म पश्चात प्राप्ति वाला जन्म था, गुरु महाराज जी का भी अंतिम जन्म प्राप्ति वाला था, जड़ भरत शुकदेव ध्रुव भगवान श्री कृष्ण इत्यादि ऐसे महापुरुष थे जिन्हें पूर्णत्व की प्राप्ति जन्मना थी। ऐसे महापुरुषों का योग शीघ्र सिद्ध होता है क्योंकि
भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम।
भजन करते करते जिनकी विदेहावस्था आ गई, प्रकृति लय हो चली है, ऐसे योगियों को इस योग की प्राप्ति में भाव प्रत्यय अर्थात जन्म ग्रहण करना ही माध्यम होता है, भजन का विशेष सहयोग नहीं रहता। जैसे शुकदेव श्री कृष्ण ध्रुव इत्यादि होते आए हैं, इन्होंने जन्म लिया, जन्मते ही इनके सामने सिद्धियां भली प्रकार कार्य कर रही थी, इनका भजन पूर्ण हो चुका है, अब पूर्णत्व की प्राप्ति में इनका जन्म लेना ही माध्यम है। ध्रुव ने पूछा, भगवन सुना है साधक करोड़ करोड़ वर्ष यत्न करते हैं तब कहीं आप दर्शन देते हैं, हमें आप अत्यंत अल्प साधन से ही मिल गए, ऐसी अनुकंपा क्यों? भगवान ने कहा, वत्स तुम कई जन्मों से भजन करते आए हो, इस पहाड़ को देखो जो अस्थि पंजरों का ढेर है, यह सब तुम्हारी ही हड्डियां हैं, यही चट्टान पर तुमने भजन किया, इसी स्थल पर तुम्हारा शरीर पात हुआ, यह तुम्हारा प्राप्ति वाला जन्म है, प्राप्ति में 6 माह ही शेष थे जिसे तुमने पूर्ण कर लिया, अब तुमने अचल पद प्राप्त कर लिया। महाभारत में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण पिछले 10 जन्मों से लगातार चिंतन परायण थे, वे उन जन्मों में विष्णु वामन नारायण इत्यादि रूपों में अवतार भी कहलाए किंतु अपूर्ण थे। राजन इस जन्म में यह परब्रह्म परमात्मा के रूप में आपके साथ है, विजय आपकी होगी, ऐसा हमें देवर्षि नारद जी ने बताया है। युधिष्ठिर को सांत्वना प्रदान करते हुए अर्जुन ने ऐसा कहा। वस्तुतः भगवान के जन्म के साथ ही उनकी अलौकिक विभूतियां प्रदर्शित होने लगी थी, भजन स्वल्प ही शेष था। आप 3 दिन बद्रिकाश्रम में ध्यानस्थ हुए। ब्राह्म्य वेला में 2 बजे से ही उठकर आंखों पर जल के छींटे देकर भजन में बैठ जाया करते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण भाव प्रत्यय योगी थे। भाव माने शरीर, इनकी पूर्णत्व प्राप्ति में जन्म लेना ही माध्यम था, साधन नहीं। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। बाहर देखी सुनी वस्तु में कल्पना रहित वृत्ति का सीधा प्रवाह जब चलता हो, यह महाविदेहावस्था है। इसके जागृत होते ही ज्योतिर्मय दृष्टा आत्मा और तुम्हारे बीच का आवरण शांत हो जाता है। इस स्थिति वाले साधक का शरीर यदि छूट जाता है तो जन्म लेना ही उसकी पूर्णता का माध्यम बन जाता है। उसकी प्राप्ति में भाव प्रत्यय पुनः जन्म लेना ही माध्यम है, न कि साधना। साधना तो उसकी पूरी हो चुकी, इसीलिए इन महापुरुषों का योग तत्काल सिद्ध होता है, किंतु अन्य लोगों का योग कैसे सिद्ध होता है, इस पर कहते हैं।
श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम।
दूसरे साधकों का चित्त वृत्ति निरोध और लक्ष्य प्राप्ति रूप योग श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रमशः सिद्ध होता है। पहले तो ईश्वर पथ में श्रद्धा आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति।
अर्जुन, श्रद्धावान संयतेन्द्रिय तथा तत्परायण पुरुष उस ज्ञान को प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। ईश्वर पथ में श्रद्धा भाव अनिवार्य है। श्रद्धा के बिना भगवान से कुछ मिलता ही नहीं, सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इस पथ में श्रद्धा अनिवार्य है, वो भी केवल ईश्वर के प्रति। ईश्वर के स्वरूप की चर्चा महर्षि इसी पाद के 24वें सूत्र में करेंगे। इस पथ में दूसरी आवश्यकता मन की दृढ़ता है। साधक को शौर्य के साथ कमर कसकर साधना में लगना चाहिए। ऐसा न हो कि थोड़ा कष्ट मिलते ही पीछे हट गए, ध्रुव प्रहलाद या मीरा की तरह टेक के साथ लगने का विधान है। साधक को लक्ष्य सदैव स्मृत रहना चाहिए। सदैव सचेतावस्था अनिवार्य है। खाते पीते उठते बैठते प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ सुरत लक्ष्य पर टिकी रहे। सुरत जिव्या के स्वाद या इंद्रिय भोगों में रस न लेने लगे। ईश्वरीय संदेशों निर्देशनों को पकड़ने वाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा पूर्वक क्रम क्रम से यह योग सिद्ध होता है। पूर्ण श्रद्धा पूर्ण पराक्रम तथा पूर्ण स्मृति के साथ रहने वाले साधकों के कई स्तर हैं।
तीव्र संवेगानां आसन्नः।
जिनके साधन की गति तीव्र है उनके लिए यह योग शीघ्र सिद्ध होता है। अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विघ्नों को टालते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाले चित्त वृत्तियों का निरोध शीघ्र कर लेते हैं। साधना की मात्रा भी प्राप्तिकाल को प्रभावित करती है।
मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः।
साधना की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है। प्राप्ति काल में कुछ अंतराल बढ़ जाता है। किसी साधक के अंतराल में संस्कारों का वेग अधिक है, किसी के संस्कार अल्प है। उसी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता अथवा विलंब हो सकता है। भगवान बुद्ध बोध गया में भजन कर रहे थे। 5 भिक्षु भी उन्हीं के समीप साधना कर रहे थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध को भोजन करते देखा। उन्होंने बुद्ध को शरीर में आसक्त समझ उनका साथ छोड़ अन्यत्र तप करने सारनाथ चले आए। इधर बुद्ध को स्थिति मिल गई। उन्हें आदेश मिला कि अल्प मल वालों का कल्याण करें। तथागत सीधे वहीं चले आए जहां वे 5 भिक्षु थे। दूर से ही गौतम को देखकर उन भिक्षुओं ने निश्चय किया था कि इनका अभिवादन न किया जाए, स्वागत में चरण न धुलाया जाए। किंतु ज्यों ही तथागत समीप पहुंचे सब खड़े हो गए। किसी ने तौलिया लिया, किसी ने जल प्रस्तुत किया, किसी ने आसन लगाया, किसी ने चरण प्रक्षालन कराया। तथागत बैठ गए। उन भिक्षुओं ने प्रश्न किया। बुद्ध का उपदेश आरंभ हुआ। उपदेश के दौरान ही एक को स्थिति मिल गई, दूसरे को 14 दिन पश्चात कैवल्य पद प्राप्त हो गया, तीसरे भिक्षु को उन्हीं उपदेशों पर चलकर 2 पश्चात परम नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हुई। जबकि उन सब ने साधन में एक जैसा ही श्रम किया था। यही कारण है कि तीव्र संवेग वालों में भी प्राप्ति में काल का भेद हो जाता है। अब बताते हैं अभ्यास किसमें करें। महर्षि ने पहले तो यह बतलाया कि वैराग्य और अभ्यास बिना उकताए चित्त से सांगोपांग निरंतर करने पर दृढ़ स्थिति वाला होता है। इससे चित्त वृत्तियां शांत और निरुद्ध हो जाती हैं। किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि अभ्यास में चित्त को कहां ठहराएं, आरंभ कहां से करें। इस पर कहते हैं,
ईश्वर प्रणिधानाद्वा,
अथवा ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है। किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं। ईश्वर का स्वरूप क्या है? इस पर कहते हैं,
क्लेश कर्म विपाका सैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः।
क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो अपरामृष्टः संबंधित नहीं है, पूर्णतः निर्लेप है, परे है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। यही ईश्वर की परिभाषा है। संसार क्लेश, कर्म, कर्मों के संग्रह और उसके आशय से बंधा है। इन सब से अत्यंत परे, अर्थात जैसे कभी कोई संबंध था ही नहीं, इतना परे विशेष पुरुष ईश्वर है। क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जो जीव के दुख के कारण है, शुभ अशुभ मिश्रित एवं शुभाशुभ रहित कर्म, उनके परिणाम और उन कर्म संस्कारों की वासना से जो सर्वथा उपराम है, ईश्वर है। देखें उस ईश्वर की विशेषता।
तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्।
वह ईश्वर सर्वज्ञता का कारण है, वह अनंत सर्वज्ञता का सहज स्रोत है। इसी प्रकार अन्यान्य गुणों का भी स्रोत है। बिना किसी सहयोग के वह सबको जानता है, सबको देखता है और समझता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। वह ईश्वर
पूर्वेशामपि गुरुः कालेनानुवच्छेदात्।
वह ईश्वर पूर्वेशाम, पूर्व में जो प्रत्याशी होते आए हैं, उन गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि काले नान वच्छेदात, काल से उसका अवच्छेद नहीं है, वह अकाल पुरुष है। सृष्टि में अनंत गुरु हुए हैं, उनमें प्रवाहित गुरुत्व यही है, काल से परे है। भगवान श्री कृष्ण को गीता में गुरुर गरीयान, गुरुओं का भी परम गुरु कहा गया है। उस ईश्वर को कैसे पुकारें, उसका नाम क्या है?
तस्य वाच कह प्रणवः।
उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव, ओंकार, ओम है। गीता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में है, ओम, तत् और सत्, यह तीनों उस पर ब्रह्म परमात्मा का निर्देश करते हैं, स्मृति दिलाते हैं। इसी ओम के द्वारा यज्ञ, वेद और ब्राह्मण रचे गए हैं। ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म, ओम इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। उस ईश्वर का नाम प्रणव है, क्योंकि प्राणों द्वारा ही उसका संचार है। प्रणव और ओम पर्यायवाची शब्द है।
तज्जपस्तदर्थ भावनम्।
उस ओम का जप और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का ध्यान, ईश्वर प्रणिधान है। पहले बताया गया कि अभ्यास दीर्घ काल तक बिना उकताए चित्त से आदर पूर्वक निरंतर करना चाहिए, किंतु यह नहीं बताया गया कि अभ्यास में किया क्या जाए। यहां महर्षि स्पष्ट करते हैं कि ओम का जप करें और उसके अर्थ स्वरूप उन परमेश्वर का ध्यान करें, उनके प्रति श्रद्धा स्थिर करें, किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं, तब चिंतन कैसे करें? पहले ध्यान श्रद्धा से ही होता है, क्रमशः ईश्वर ही बोध करा देता है कि सद्गुरु कौन है। ध्यान सद्गुरु का ही किया जाता है। सद्गुरु अव्यक्त ईश्वर स्वरूप है, मानव तन के आधार वाले हैं। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूं, किंतु हूं मनुष्य, शरीर के आधार वाला। यही सद्गुरु का स्वरूप है। जब सद्गुरु का परिचय मिल जाएगा, तब ध्यान और स्पष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में ईश्वर का निवास और ईश्वर प्राप्ति का उपाय, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो लोग उसे देखते क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते, तो शरण किसकी जाए? अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं,
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।
अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। थोड़ा भाव किसी अन्य देवता में है, थोड़ा भूत, भवानी, यक्ष, राक्षसादि में उलझ गया, तब तो आपकी श्रद्धा बंट गई। अतः संपूर्ण भावों से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। परंपरागत मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं, इन्हें तोड़ना कठिन होता है। मान ले कि हमने मान्यताएं तोड़ी, मात्र एक ईश्वर की शरण में चले ही गए, उससे लाभ तत् प्रसादात पराम शांतिम, उसकी कृपा से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है, सनातन है, सदैव तुम रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा और निवास भी शाश्वत हो जाएगा। इसी का नाम है अक्षय धाम, कैवल्य पद। किंतु हृदय स्थित ईश्वर को हमने देखा नहीं, उसकी शरण में जाएं तो कैसे, उसकी विधि क्या है? अगले ही श्लोक में कहते हैं, अर्जुन इससे भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को सुन।
मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे।
अर्जुन मुझ में मन को लगा, मुझे नमस्कार कर, मेरा अनन्य भक्त हो, मैं सत्य कहता हूं तू मुझ में निवास करेगा।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
अर्जुन संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दो, एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक न कर। भगवान ने पहले दो श्लोकों में बताया कि ईश्वर का निवास हृदय में है, उसकी शरण जाओ। अगले ही दो श्लोकों में कहते हैं, नहीं, सारे धर्मों की चिंता छोड़ केवल मेरी शरण में आओ। मन तो एक है, संपूर्ण भाव हृदयस्थ ईश्वर के भीतर लगाएं या दूसरा बाहर जो श्री कृष्ण खड़े हैं उनकी शरण में जाएं। वास्तव में यदि हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करना है तो वर्तमान में जो ईश्वर भाव को प्राप्त शरीर में सद्गुरु हैं उनकी शरण में जाना होगा। श्री कृष्ण एक योगेश्वर एवं सद्गुरु थे, अतः संपूर्ण भावों से इन सद्गुरु की शरण जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मानुषीं तनुमाश्रितम, मैं परम का स्पर्श कर परम भाव में स्थित हूं किंतु मनुष्य तन के आश्रित हूं, शरीर तो एक आधार है। ऐसे सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान की विधि बतलाते हुए भगवान कहते हैं,
यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे।
प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष जिसे अविनाशी कहते हैं, वीतराग महापुरुष, परम विरक्त जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसे चाहने वाले ब्रह्मचर्य आदि कठोर व्रतों का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं संक्षेप में कहूंगा।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूर्ध्न्याधायात्मन प्राणम आस्थितो योगधारणा।
संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को संयमित कर, वासनाओं से समेट कर, मन को हृदय देश में स्थिर कर, अंतःकरण में योग विधि धारण कर।
ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम्।
ओम, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उस नाम का जप करते हुए मां मनुस्मरण, मेरे स्वरूप का भली प्रकार ध्यान धरते हुए, सतत चिंतन करते हुए जो देहाध्यास का त्याग कर जाता है, तत्क्षण वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहां श्री कृष्ण ने हृदयस्थ उस ज्योतिर्मय ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की ही शरण जाने पर बल दिया, किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं, शरण जाए तो कैसे। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण के ही शब्दों में, वो एक सद्गुरु हैं, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर भाव को प्राप्त सद्गुरु की शरण जाओ। सद्गुरु एक अवस्था है, एक स्थिति है। इन सद्गुरु की शरण, उनके चरणों का ध्यान ही एक उपाय है। भगवान कहते हैं, अर्जुन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चार वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या चार भागों में मनुष्यों को बांट दिया। भगवान कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को चार श्रेणियों में बांटा। गुण एक पैमाना है, तराजू है। गुण तीन है, सात्विक, राजस और तामस। तामसी होगा तो आलस्य प्रमाद रहेगा, राजसी होगा तो कामनाओं का बाहुल्य रहेगा, सात्विक होगा तो धारणा ध्यान की पकड़ सहज हो जाएगी। इन गुणों के माध्यम से ही कर्म को चार भागों में भगवान ने बांटा। योग विधि यज्ञ है, उसे क्रियान्वित करना कर्म है। गीता के अनुसार कर्म केवल आराधना है, चिंतन है, योग की निश्चित विधि है, इसीलिए इसे नियत कर्म कहा गया। इस नियत कर्म को भगवान ने चार भागों में बांटा, अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। इसके कर्ता मुझ अव्यक्त आत्मा को तू अकर्ता ही जान। आप बोलते हैं शरीरधारी हैं, विभाजन करते हैं, तो आप अकर्ता क्यों। इस पर भगवान कहते हैं,
नमां कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्म भिर्न सबध्यते।
अर्जुन, कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस कर्म का फल है परमात्मा, परम तत्व परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और स्थिति मुझसे भिन्न नहीं है। मैं वही अव्यक्त स्वरूप हूं, कर्मों का फल मुझसे विलग नहीं है। इतिमाम यो अभी जानाति, इस स्तर से जो भी मुझे जान लेता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण जो भी रहे हों, पुरुषोत्तम, परब्रह्म, वह स्थिति सबके लिए सुलभ है। इसी आशय को यहां महर्षि पतंजलि ने भी प्रस्तुत किया कि ईश्वर का वाचक प्रणव है, उसका जप करें और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का चिंतन करें, जो सर्वज्ञ है, गुरुओं का गुरु है, सद्गुरु है। किंतु शरीर के अंतराल में कुछ ऐसे विघ्न हैं जो जप और ध्यान में मन को टिकने ही नहीं देते। इस पर कहते हैं,
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराय भावश्च।
उक्त साधन नाम अर्थात ओम के जप और ईश्वर सद्गुरु के ध्यान के अभ्यास से अंतराया भाव, अंतराय अर्थात विघ्नों का अंत हो जाता है, तथा अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जिन विघ्नों का अभाव हो जाता है वे कौन है। इस पर कहते हैं,
व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वान अनुवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः।
व्याधि, स्तेयान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थि तत्व, ये नौ चित्त के अंतराय हैं। आंतरिक विघ्न है, बाह्य संग दोष न होने पर भी साधक को भीतर ही भीतर उद्वेलित कर देते हैं, जिससे साधन में मन नहीं लगता। इन विघ्नों में सर्वप्रथम व्याधि अर्थात रोग है। शरीर या किसी इंद्रिय में रोग उत्पन्न हो जाना, चित्त का उससे प्रभावित हो जाना और चिंतन छूट जाना व्याधि है। दूसरा विघ्न स्तयान अर्थात चित्त की अकर्मण्यता है। इच्छा होने पर भी साधन में प्रवृत्त न होने का स्वभाव स्तयान है। योग साधन के फल में अथवा अपनी ही शक्ति में संदेह हो जाना संशय है। साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना, साधन के अतिरिक्त अन्य व्यर्थ की वार्ता में समय नष्ट करना प्रमाद है। चित्त अथवा शरीर के भारी होने के कारण नाम जप या ध्यान में मन न लगना आलस्य है। अधिक भोजन कर लेने से अथवा पेट साफ न होने से भी आलस्य बढ़ जाता है। आलस्य निद्रा जमुहाई, तीनों काल के भाई। आलस्य से बचने के लिए महात्मा लोग स्वल्प भोजन, स्वल्प निद्रा का अनुष्ठान करते हैं तथा सदा सचेत रहते हैं। भजन करते करते कभी ऐसा संयोग आ जाता है कि वासना ही प्रिय लगने लगती है, वैराग्य में त्रुटि आने लगती है, यही अविरति है। योग के साधनों तथा उसके फल को मिथ्या मान लेना भ्रांति दर्शन है। साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं में स्थिति का प्राप्त न होना अलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह भग्न हो जाता है। योग साधन से किसी भूमिका में चित्त की स्थिति होने पर भी उसमें चित्त का न ठहरना अनवस्थि तत्व अंतराय है। ईश्वर प्रणिधान, ओम के जप तथा ईश्वर के सतत ध्यान चिंतन से ये अंतराय भली प्रकार शांत हो जाते हैं। इन विघ्नों का साथ देने वाले पांच विघ्न और हैं।
दुख दौर मनस्यांग में जयत्वा श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः।
दुख मन का क्षोभ, अंगों में कंपन, अनियमित श्वास प्रश्वास, ये पांच विघ्न विक्षेप सह भुवः। व्याधि, स्तयान, संशय, प्रमाद आदि उपर्युक्त नौ विक्षेपों के साथ उत्पन्न होते हैं। दुख तीन प्रकार के हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। देहजन्य विकार से चिंतन में मन न लगना दैहिक दुख है, जैसे वायु का प्रकोप, स्नायविक व्याधियां इत्यादि। शरीर में रोग अथवा वासनाओं से चित्त की चंचलता दैहिक दुख का कारण है। जल तथा वायु द्वारा भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अत्यधिक ग्रीष्म, शीत इत्यादि दैविक दुख कहे जाते हैं। जड़, चेतन, स्थावर प्राणियों द्वारा मिलने वाला आघात भौतिक दुख है। जैसे भगवान महावीर भजन में बैठे थे, किसी चरवाहे ने उनके कान में कुश की कील ठोंक दी। बहुत से साधक कहते हैं ये सज्जन ठीक नहीं है, हमसे द्वेष रखते हैं, आप भजन करने आए हैं या लोगों की भावना संग्रह करने? मन में अनमनापन, खिन्नता, इच्छा के विरुद्ध घटित होने पर क्षोभ इत्यादि दौर मनस्य हैं। अंगों में आकस्मिक कंपन अंग मेजयत्व है। चिंतन में सुरत स्थिर होते ही जिस पल मन विचारों से रिक्त होता है, शरीर को एक झटका सा लगता है, साधक उछल पड़ता है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं गिर भी सकता है। इससे सतर्क करते हुए पूज्य महाराज जी निर्देश देते थे कि साधक का आसन न अति नीचा और न अत्यंत ऊंचा ही होना चाहिए। इस प्रकार शारीरिक कंपन अंगमेजयत्व है और कभी कभी इन व्याधि इत्यादि अंतरायों के प्रभाव से योग का सांगोपांग अनुष्ठान नहीं हो पाता। योग के किसी अंग के अनुपालन में त्रुटि आ जाने से मन खिन्न हो जाता है। हठात श्वास का बाहर निकल जाना भी योग का सह विक्षेप है। जो कुछ भी साधक ने थोड़ा बहुत सीखा है, न चाहते हुए भी उस जानकारी का व्यक्त हो जाना प्रश्वास संबंधी विक्षेप है। अनधिकारी द्वारा उपदेश एक ऐसी ही चेष्टा है। उसी तरह श्वास संबंधी विक्षेप, क्लिष्ट संकल्प, बाह्य संकल्पों का साधक के भीतर प्रवेश कर जाना है, जिससे साधक व्यर्थ चिंतन करने लग जाता है। ये विघ्न बार बार मन को उद्वेलित करते ही रहते हैं। इन्हें शांत करने के उपायों पर महर्षि प्रकाश डालते हैं।
तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः।
उन विक्षेपों तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। नाम या रूप में से किसी भी एक स्थान पर बारंबार चित्त को समेटकर स्थिर करने का यत्न करना चाहिए। क्षण में नाम, क्षण में रूप ऐसा नहीं, जिसमें मन अधिक लगता हो उसी में अधिक देर तक अभ्यास बढ़ाएं। इस प्रकार करने से विघ्न शांत होकर चित्त वृत्ति भजन में लगने वाली हो जाती है। साधक संसार में रहकर ही भजन करता है। भले बुरे लोग टकराते ही रहते हैं, उनसे निर्लेप रहने की विधि बताते हैं।
मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्यापुण विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम्।
सुखी दुखी, पुण्यात्मा और पापियों के विषय में यथाक्रम मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त निर्मल होता जाता है। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, असूया, अपकार, द्वेष इत्यादि चित्त के मल हैं। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह जनि सपनेहु इनके बस होहु। वस्तु के प्रति लगाव राग है। दूसरों के गुणों में भी दोष देखना असूया है। इन मलों से निवृत्ति हेतु प्रस्तुत सूत्र में महर्षि कहते हैं कि सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। गीता में है कि बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष परब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए वह अक्षय सुख का अनुभव करता है, जिस सुख का कभी क्षय नहीं होता। इस सुख का उपभोग कौन कर सकता है जो बाहर के विषय भोगों से अनासक्त है। ऐसे सुखी व्यक्तियों में प्रीति रखने से साधना में सहयोग मिलता है। समस्त आप्त पुरुषों की वाणी में सुख एक ही प्रकार का है, एक हरि की भक्ति। रामचरितमानस में है, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हिमते अनल प्रगट बरु होई, बिमुख राम सुख पाव न कोई। अतः इन ईश्वर परायण पुरुषों में मैत्री भाव से चित्त निरोध की दशा में सहायता मिलेगी, क्योंकि उनकी संगति से जो भी उपलब्धि होगी वह साधना परायण ही होगी। इसी प्रकार संसार में फंसे आकंठ डूबे दुखी व्यक्तियों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, न कि घृणा की भावना। दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सीता ने रावण को भिक्षा देने में दया की, जिसका परिणाम उन्हें लंका जाना पड़ा। एक स्तर से पहले साधक के लिए दया का विधान नहीं है, उसे सतत चिंतन में ही अनुरक्त रहने का विधान है। दया संत का सहज स्वभाव है। साधक को भी दुखियों के प्रति करुणा की भावना रखनी चाहिए, किंतु भावना रखने और दुख निवृत्ति हेतु क्रियाशील हो उठने में अंतर है, जिसके लिए इष्ट के आदेशों के अनुपात में ही संलग्न होना चाहिए। पुण्यात्माओं के प्रति मन में प्रसन्नता की भावना रखनी चाहिए। गीता में कर्म की नियत विधि को ही पुण्य कर्म कहा गया है। इस नियत कर्म का आचरण करने वालों के प्रति प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए कि भगवान की इन पर कितनी कृपा है। यही विधि है, इन्हीं सोपानों पर मुझे भी चलना है, न कि उनकी नकल करने लगे या उनमें दोष ढूंढने लगे। पापात्मा अर्थात जो पतन की ओर उन्मुख हैं, ऐसे लोगों का संसर्ग होने पर उनके गुण दोषों से तटस्थ रहना चाहिए। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरी स्वान की नाई। उसका त्याग नहीं, असंग रहना चाहिए। व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थिति ही ऐसी है। आप उनसे कुछ ग्रहण न करें। इन भावनाओं से चित्त निर्मल होने लगता है। चित्त वृत्ति को स्वच्छ करने के लिए अन्य उपाय बतलाते हैं।
प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य,
अथवा प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त स्थिर होता है। श्वास को बाहर निकालें, जितना संभव हो उसे बाहर रोकें। बार बार श्वास बाहर निकालें और रोकें। 4-6 बार भी ऐसा करने से दूषित वायुमंडल बाहर हो जाता है। चिंतन में बैठने पर मन शीघ्र एकाग्र होता है। चिंतन, भजन, नाम, रूप में मन अधिक लगता है। चित्त को स्थिर करने का एक अन्य उपाय महर्षि बतलाते हैं।
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी।
हमारा जो विषय वस्तु है योग, चित्त वृत्ति का निरोध, अंतरायों से मुक्ति, ईश्वर प्रणिधान, नाम रूप का सतत चिंतन, इन विषयों में लव लग जाए, प्रवृत्ति जग जाए। विषय के अनुरूप प्रवृत्ति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। चिंतन का स्तर उन्नत हो जाने पर ईश्वरीय सहयोग मिलने लगता है, वह भी मन स्थिर करने में सहायक होता है।
विशोकावा ज्योतिस्मती,
प्रकाशमय ज्योतिर्मय दृष्टा एकमात्र परमात्मा है। उस ज्योति स्वरूप दृष्टा का दर्शन होने पर भी मन की तरंगे शांत हो जाती है। भगवान की अनुकूलता का अनुभव कर साधक का उत्साह बढ़ जाता है। यह दर्शन विघ्नों का शमन कर मन को स्थिर करने में सहायक होता है।
वीतराग विषयम वाचित्तम।
वीतराग अर्थात राग मुक्त महापुरुषों की जीवनचर्या को अंतःकरण में धारण करने से चित्त स्थिर होता है। ऐसे आप्त पुरुषों की स्थिति, उनकी रहनी, उनकी प्राप्ति का स्मरण, चिंतन मनन करने से, उसके अनुरूप अपने को ढालने से भी चित्त स्थिर होने लगता है, विघ्न शांत होने लगते हैं। एक उपाय है स्वप्न।
स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा,
निद्रा काल में स्वप्न का ज्ञान अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। पूज्य गुरु महाराज का कहना था, योगी कभी स्वप्न नहीं देखता। वह जो कुछ देखता है होनी देखता है, भविष्य देखता है। वह स्वप्न में भी साधना की पकड़, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति का विकास कैसा है इसे देखता है। निद्रा काल में जो दृश्य मिलता है भगवान से प्रसारित होता है, सद्गुरु से मिलता है, उसका अनुसरण करने वाला चित्त स्थिरता की ओर अग्रसर हो जाता है।
यथाभिमत ध्यानाद्वा,
जैसा अभिमत है ईश्वर शरणागति, ओम के जप से अंतरायों का अंत, चित्त वृत्ति का शांत प्रवाहित होना, समाधि की जागृति, चित्त का एकाग्र होना, ऐसा कहीं से कुछ मिले उसे ध्यान में लेने से चित्त वृत्ति स्वच्छ हो जाती है। वातावरण को साधना के अनुरूप ढाल लेना, आशय को बदलकर साधन के अनुकूल ढाल लेना यथाभिमत ध्यान है। एक बार अर्जुन चिंतनरत था, अकस्मात कर्ण कोहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो देवलोक की अप्सरा नृत्यांगना थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मातृवत देखा। शब्द रूप से मिलने वाले विकारों के स्थान पर अर्जुन ने आशय बदलकर साधनानुकूल मातृव्रत ध्यान किया। पूज्य महाराज जी के संरक्षण में साधन रत एक महात्मा निराधार विचरण की अनुमति चाहते थे। उनके बार बार आग्रह करने पर महाराज जी ने अनमनस्क भाव से अनुमति दे दी। वह महात्मा कुछ ही दूर आए होंगे, छोटे बच्चे पांव के बीच लकड़ी डालकर घोड़े का खेल खेल रहे थे। अचानक एक लड़का एक पांव उठाकर कूदते हुए कहने लगा, लंगड़ा चींटा चला रिसाए, नौ दिन में बीता भर जाए, 80 कोस जमुना का तीर, कै दिन में पहुंचा वह वीर। इतना सुनते ही उन महात्मा को अपशकुन होने लगा। उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि बच्चे तो खेल खेल में कुछ बोलते ही हैं, इस पर हमें अपशकुन क्यों हो रहा है? क्या वो मेरे लिए कह रहा है? भगवान ने समाधान दिया कि हां, तुम्हारी यही दशा है, तुम्हारा वैराग्य लंगड़ा है, योग रूपी यमुना दूर है, तुम्हारी गति औसतन 1 इंच प्रतिदिन है, अभी तुम्हारी क्षमता नहीं है। बस वे लौट आए। महाराज जी कहते थे, हो भगवान जब कृपा करते हैं तो पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से, मनुष्य से, कहीं से भी प्रेरणा कर सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ा देते हैं। वे सर्वत्र हैं, इसलिए सर्वत्र से बोल सकते हैं। इस प्रकार साधना में जो सहायक हो उसी को आशय में ढालकर ध्यान करते जाएं। ऐसा करने से चित्त स्वच्छ, निर्मल और स्थिर हो जाता है। भगवान दत्त ने 24 उदाहरणों से शिक्षा ग्रहण की। अजगर में भी उन्हें साधनोपयोगी एक गुण दृष्टिगत हो गया। उन्होंने देखा भारी भरकम अजगर के मुख के समीप कोई न कोई जीव जंतु आ ही जाता, जो उसका आहार बन जाता था। दत्त भगवान ने उससे सीखा कि साधु को उदर पोषण के लिए द्वार द्वार नहीं घूमना चाहिए। अजगर कोई गुरु नहीं था, किंतु भगवान दत्त ने उससे भी सद्गुरुओं की विद्या को उद्दीप्त करने वाला एक गुण आचरण में ढाल लिया।
परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः।
इस प्रकार ध्यान करते करते योगी का मन परमाणु से लेकर परम महत्व के विषय पर एकाग्रता का अधिकार प्राप्त कर लेता है। उस समय अत्यंत सूक्ष्म परमाणु से लेकर बड़ी से बड़ी जिस किसी वस्तु में एक बार सुरत स्थिर हो गई, चित्त वहां स्थिर रहेगा। यह योगी के जीते हुए चित्त की विशेषता है। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय वह सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ से लेकर महानतम पदार्थ तक जहां चाहे तत्काल स्थिर कर सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेगंते सोपमा स्मृता। वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ जिस प्रकार सीधे ऊपर जाती है, योगी के भली प्रकार ठहरे हुए चित्त की यही उपमा है। न उसके चित्त में भले उद्वेग पैदा होते हैं न बुरे, न हृदय से उद्वेग पैदा हो न वाह वायुमंडल के संकल्प उसके भीतर प्रवेश कर पाए। यह योगी के जीते हुए स्थिर चित्त की परिभाषा है। ऐसे चित्त में साधना का क्या स्वरूप है?
क्षीण वृत्तेरभिजातस्यैव मणेर गृहेत्र ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थत दंजनता समापत्ति है।
जिसकी क्लिष्ट अक्लिष्ट समस्त वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, उसका चित्त ग्रहीता अर्थात साधक पुरुष ग्रहण अर्थात अंतःकरण की दृष्टि सुरत और ग्राह्य ईश्वर एवं उसका नाम इत्यादि में उसी प्रकार तदाकार अर्थात तद्रूप हो जाता है, जैसे उत्तम जाति की विशुद्ध स्फटिक मणि जिस वस्तु के समक्ष होती है वैसा ही रंग धारण कर लेती है। ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य का बोध संप्रज्ञात समाधि है, जिसमें साधक को अपना एवं अपनी स्थिति का भान रहता है कि मैं कहां हूं कैसा हूं। अब समाधि के अगले चरण पर प्रकाश डालते हैं।
तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पये है संकीर्ण सवितर्का समापत्ति है।
समापत्ति अर्थात संप्रज्ञात समाधियों में भी शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण अर्थात मिश्रित चित्त का समाधान सवितर्क समाधि है। संसार में तरह तरह के शब्द लोग सुनते ही रहते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं, वस्तुओं का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, किंतु उससे किसी की समाधि लगती दिखाई नहीं देती। वस्तुतः दृष्टा और दृश्य के संयोग से भगवान जो प्रेरणा देते हैं उसी का नाम शब्द है। संत कबीर कहते हैं, शब्द ही मारा गिर पड़ा शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनके सर गयो काज। जब शब्द पकड़ में आया साधक गिर पड़ा समर्पित हो गया, मैं ज्ञानी हूं ध्यानी हूं ऐसा अहं खो गया। शब्द में इतना बल है कि कोई राज्य सुख तिनके की तरह त्याग कर अलग हो गया, और जिन जिन ने शब्द पर विवेक किया तिनके सर गयो काज, उनके कार्य की सिद्धि हो गई, बेड़ा पार हो गया। शब्द बिना श्रुति आंधरी। कोई चिंतन में मन लगाता है सुरत में स्वरूप पकड़ता है, किंतु उसके साथ निरीक्षक परीक्षक के रूप में शब्द नहीं मिलता। भगवान निर्णय नहीं देते तो सुरत भी अंधी है। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहां लऊं जाए, द्वार न पाए शब्द का फिर भटका खाए। यदि शब्द का स्रोत नहीं मिला तो सुरत लगाने और योग साधने से कोई लाभ नहीं, जाने कहां ले जाकर पटक दे। ये शब्द हैं भगवान के, दृष्टा स्वयं जो दृश्य प्रसारित करते हैं, जिसका प्रयोजन पुरुष के लिए साधनोपयोगी भोग तथा मोक्ष प्रदान करना है। वे दृष्टा जैसा जैसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं उसका नाम है शब्द। चित्त शांत प्रवाहित है, ऐसे में कैसा शब्द सुनाई दिखाई पड़ा, उसका अर्थ और उसकी जानकारी इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण अर्थात मिली हुई चित्त की समाधि सवितर्क है। यहां परमात्मा तो नहीं है लेकिन संप्रज्ञात समाधि है, किंतु परमात्मा का विकल्प भली प्रकार पुष्ट है। कबीर कहते हैं, शब्द सो प्रीति करे सो पावे। इससे उन्नत समाधि की अवस्था निर्वितर्क है, जिस पर प्रकाश डालते हैं।
स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का।
जब चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है, केवल लक्ष्य मात्र का ही आभास रह जाता है, उस समय स्मृति परिशुद्धौ, स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है, तब वह निर्वितर्क समाधि है। न शब्द है, न अर्थ है, न ज्ञान है, चित्त का स्वरूप ही शून्य हो गया। कौन शब्द सुने तथा कौन ज्ञान रखे, लक्ष्य का आभास मात्र है। उस समय स्मृति विशेष रूप से शुद्ध है, यह निर्वितर्क समाधि की अवस्था है। क्योंकि स्मृति और संस्कार का एक ही स्वरूप होता है, अब स्मृति पटल पर कोई संस्कार अंकुरित नहीं होगा। कैवल्यपाद के नवम सूत्र में महर्षि बताते हैं कि जाति अर्थात जन्म परिवर्तन देश और काल के लंबे अंतराल से भी संस्कारों में परिवर्तन या विराम नहीं होता। वे ठीक समय पर प्रकट होते हैं, किंतु यहां वे संस्कार निर्मूल हो गए, फिर भी संस्कारों का बीज अभी बना हुआ है, क्योंकि चित्त अभी जीवित है। इससे उन्नत अवस्था पर प्रकाश डालते हैं।
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता।
एतया एव, इसी से अर्थात पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क के वर्णन से, सविचार और निर्विचार समाधि का तथा सूक्ष्म विषया साधना की सूक्ष्म अवस्था का भी वर्णन कर दिया गया है। अब देखें इन समाधियों का परिणाम।
सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम।
साधना की इन अति सूक्ष्म अवस्थाओं में अलिंग पर्यवसानम, प्रकृति की अति सूक्ष्म परतों मूल प्रकृति पर्यंत भली प्रकार वशीकार हो जाता है। अब प्रकृति भी उसे उद्वेलित नहीं कर सकती।
तायेव सबीजह समाधि।
उपर्युक्त सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार समाधियां निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं है, चित्त का बीज विद्यमान है, इसलिए ये सब की सब सबीज समाधि ही है। इन चार प्रकार की समाधियों में भी निर्विचार समाधि के निर्मल हो जाने पर
निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद।
निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी में अध्यात्म प्रसाद, आत्मिक विभूतियां भली प्रकार प्रसारित हो जाती हैं। सनातन पुरुष अजन्मा शाश्वत जिन विभूतियों वाला है, वे सारी विभूतियां योगी को प्राप्त हो जाती हैं। आत्मा का आधिपत्य स्थापित हो जाता है, आत्मिक विभूतियों का सारा प्रसाद उसे प्राप्त हो जाता है, अब कोई विभूति उससे अलग नहीं है। उस समय योगी की बुद्धि रितंभरा होती है।
रितंभरा तत्र प्रज्ञा
उस समय योगी की प्रज्ञा अर्थात बुद्धि रितंभरा अर्थात सत्य से संयुक्त हो जाती है। अब वह परम तत्व परमात्मा को धारण करने की क्षमता वाली हो जाती है। जब अध्यात्म का प्रसाद मिल गया तो अब केवल परम चेतन को पाना मात्र शेष रह गया। यह बुद्धि साधारण बुद्धियों से अलग है। इस पर कहते हैं,
श्रुतानुमान प्राज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्।
श्रुत अर्थात श्रवण किए हुए और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस रितंभरा प्रज्ञा का विषय भिन्न है। जिसका ज्ञान श्रुत और अनुमान से नहीं होता उसकी जानकारी इस प्रज्ञा से होती है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। विशेष पुरुष ईश्वर है, उस अर्थ वाली है, उसको ग्रहण करने की क्षमता वाली है। इसलिए श्रवण और अनुमान से जो बुद्धि तैयार होती है उसकी अपेक्षा यह बुद्धि अत्यंत परिमार्जित है। इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह केवल प्रकृति से परे आत्मा अर्थात दृष्टा को धारण करने की क्षमता वाली है। श्रुत केवल सुनने से कोई बुद्धि तैयार नहीं होती। श्रवणेन्द्रिय में कोई ध्वनि टकराते ही स्पर्श रूप रस इत्यादि प्रत्येक के अभ्यास तथा अन्य जन्मों के संस्कार स्मृति पटल पर उभरते ही अनुमान का सूत्रपात होने लगता है। वस्तुओं की जानकारी हो जाती है, किंतु यह प्रज्ञा विशेष अर्थ वाली है। श्रुति या सुरत मन की दृष्टि है, यह भला बुरा सब कुछ ग्रहण करती है। सुरति में स्फुरण के साथ ही अनुमान होने लगता है, किंतु इस रितंभरा प्रज्ञा का स्तर उससे उन्नत है। यह पुरुष विशेष ईश्वर को धारण करने की क्षमता वाली होती है। इसके महत्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं।
तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी।
इस रितंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य समस्त संस्कारों का प्रतिबंधक होता है, उन सब का निरोध कर देता है। इसके पश्चात प्रकृति बाधक नहीं रह जाती, अब कोई संस्कार प्राप्ति में बाधक नहीं होता।
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्वीजः समाधिः।
रितंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार भी जब शांत हो जाता है उस समय सर्वनिरोध के साथ निर्वीज समाधि हो जाती है। रितंभरा प्रज्ञा के प्रभाव से जब अन्य समस्त संस्कारों का अभाव हो जाता है उससे उत्पन्न संस्कार ईश्वर को धारण करने की क्षमता वाला हो जाता है। वह ईश्वर मिलकर इस संस्कार को भी शांत कर देता है। इस प्रकार संस्कारों के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने से इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। इसी को कैवल्य पद कैवल्य समाधि भी कहते हैं। निष्कर्ष। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने इसके चार पादों में प्रथम पाद समाधि पाद में योग निरूपण के क्रम में बताया कि योग एक अनुशासन है। अनुशासित किसे करें? उन्होंने बताया चित्त की वृत्तियों को। वृत्तियों को अनुशासित कर ही लिया तो उसका क्या लाभ है? महर्षि ने बताया उस समय दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। क्या इसके पूर्व दृष्टा स्थित नहीं था? क्या दृष्टा मलिन था? महर्षि बताते हैं इसके पूर्व जैसा वृत्तियों का प्रवाह था वही दृष्टा का रूप था। वृत्तियां अनंत है। समस्त वृत्तियां दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट या अक्लिष्ट। कुछ क्लेश प्रदान करती हैं और कुछ क्लेशों से मुक्ति दिलाती हैं। इन वृत्तियों को 5 प्रकार से विभाजित किया गया है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण वृत्तियों को संचालित करता है। प्रमाण के 3 भेद बताए गए, प्रत्यक्ष, आप्त पुरुषों के दर्शन तथा अनुमान। इन इंद्रियों के समक्ष कुछ भी प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान लगा और वृत्ति गतिशील हो गई। यदि प्रमाण अविद्या जन्य मिला तो यह क्लिष्ट वृत्ति बन गई। आप्त पुरुषों का दर्शन और उनकी वाणी मिल गई तो वृत्ति अक्लिष्ट हो गई। प्रमाण वृत्तियों को केवल संचालित करता है। प्रमाण पाते ही वृत्ति गतिशील हो उठती है। विपर्यय मिथ्या ज्ञान है, अविद्या जन्य है, जिसमें मिथ्या ज्ञान को ही जड़तावश ज्ञान मान लिया जाता है। विकल्प शब्द के सहारे मिलने वाली जानकारी है, जिसमें वस्तु तो शून्य है किंतु वस्तु का विकल्प पुष्ट होता जा रहा है, यह अनुभव से संचालित है। इसका नाम दैवी संपद भी है। किंतु प्रमाण विपरीत मिल गया तो यह वृत्ति क्लिष्ट हो सकती है। यदि प्रमाण इष्टोन्मुखी मिल गया तो विपर्यय वृत्ति भी अक्लिष्ट स्वभाव की हो जाएगी। वृत्ति की 4th अवस्था है निद्रा, जो न तो मिथ्या ज्ञान की जड़ता से बंधी है न अनुभव से ही संचालित है। अभाव का आलंबन करने वाली यह वृत्ति निद्रा है, जो न तो सजातीय संस्कारों का अर्जन कर रही होती है न विजातीय संस्कारों का। कभी इधर तो कभी उधर, भले बुरे का कुछ ज्ञान ही नहीं। 5वां प्रकार है स्मृति। समस्त वृत्तियां स्मृति पटल पर अंकित रहती हैं, अवसर आने पर अंकुरित होती हैं। स्मृति भी उस समय शुद्ध हो जाती है जब चित्त का निज स्वरूप शुद्ध हो जाए। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य, जब मात्र लक्ष्य का आभास रह जाए, समाधि की उस अवस्था में वृत्तियां शांत हो जाती हैं। अनंत वृत्तियां इन्हीं 5 रूपों में घटती बढ़ती कार्य रूप लेती रहती हैं। इन वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य द्वारा किया जा सकता है। अभ्यास किसका करें? क्लेश कर्म विपाकाश यैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अभ्यास का आश्रय ईश्वर है, उसका नाम प्रणव है। ओम का जप करें और उस ईश्वर का ध्यान धरें, इससे अंतराय अर्थात विघ्न शांत हो जाएंगे। नाम और रूप के अतिरिक्त जो हमें अभिमत है योग, चित्त वृत्तियों का निरोध, जो साधन इस योग में अवरोध उत्पन्न न करते हों, साधना में सहायक हों, उनका भी अभ्यास किया जा सकता है। ऐसे 4-5 सहयोगी साधनों की चर्चा महर्षि ने की, जैसे स्वप्न में मिलने वाले निर्देशों या दृश्यों से शिक्षा ग्रहण करना, ज्योतिर्मय परमात्मा में ध्यान केंद्रित करना, आप्त पुरुषों के संसर्ग में रहना इत्यादि। इस अभ्यास से चित्त स्फटिक मणि के समान निर्मल पारदर्शी हो जाता है, प्रज्ञा रितंभरा हो जाती है, विशेष पुरुष ईश्वर को धारण करने वाली हो जाती है। अमृत पद का बोध कराकर, उसकी प्राप्ति और उसमें स्थिति दिलाकर प्रज्ञाजन्य संस्कार भी शांत हो जाता है। यही कैवल्य है, अमृत पद है, जहां मृत्यु का समावेश नहीं, सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाला जीवन है। इसके साथ ही प्रथम पाद समाधि पाद पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत्।